وہ گھر قبرگاہ ہے جس میں ذکر الہی نہ ہو. آج کا انسان اتنا مصروف ہے کہ چاہ کر بھی یاد الہی کے لیے وقت نہیں نکال پاتا. ایسی حالت میں گیتا کا پیغام کان تک پہنچ بھر جائے تو اعلی شرف اور شوکت کے تاثرات کی تخم ریزی ہو جاتی ہے. معبود کے کلام کے ان سی ڈی سے شب و روز اس اعلی معبود کی یاد بنی رہے گی اور یہی یاد الہی کی سنگ بنیاد ہے.
ओम श्री परमात्मने नमः. यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता. अतः
नवमोध्याय, नवा बाब. बाब छह तक जोग के मालिक श्री कृष्ण ने जोग की तसलसल से तहकीक की, جس کا خالص مطلب تھا یجگ کا طریقہ کار. یجگ اس آلہ میں داخلہ دلا دینے والی عبادت کے طریقے خاص کا بیان ہے جس میں متحرک و ساکن دنیا ہون کی چیزوں کی شکل میں ہے. من کی بندش اور بندش شدہ من کے بھی تحلیلی دور میں وہ لافانی عنصر ظاہر ہو جاتا ہے. تکملہ دور میں یگ جس کی تخلیق کرتا ہے اس کو قبول کرنے والا عالم ہے اور وہ ابدی معبود میں داخلہ پا جاتا ہے. اس ملن کا نام ہی جوگ ہے. اس یگ کو عملی شکل دینا عمل کہلاتا ہے. ساتویں باب میں انہوں نے بتایا کہ عمل کو کرنے والے ہر سمت جلوگر معبود مکمل عمل، مکمل روحانیت، مکمل مخصوص دیوتا، مکمل مخصوص جاندار اور مکمل مخصوص یگ کے ساتھ مجھ کو جانتے ہیں. آٹھویں باب میں انہوں نے کہا کہ یہی اعلی نجات ہے، یہی اعلی مقام ہے. پیش کردہ باب میں جوگ کے مالک شری کرشن نے خود ذکر کیا کہ جوگ کے حامل انسان کی شوکت کیسی ہے، سب میں جلوگر رہنے پر بھی وہ کیسے لا تعلق ہے، کارکن ہوتے ہوئے بھی کیسے کچھ نہ کرنے والا ہے. اس انسان کی فطرت اور اثرات پر روشنی ڈالی. جوگ کو برتاؤ میں ڈھالنے پر آنے والے دیوتا وغیرہ کے سبب سے ہونے والے خلل سے آگاہ کیا اور اس مرد کامل کی پناہ میں جانے کے لیے زور دیا. श्री भगवान उवाचा.
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षाम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा.
जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हसद व अदावत से आरी तेरे लिए मैं इस आला बसे गए राज इल्म को मखसूस इल्म के साथ बयान करूंगा. यानी हुसूल के बाद अजीम इंसान की बूदोबाश के साथ बयान करूंगा कि किस तरह वो अजीम इंसान हर जगह एक साथ अमल पैरा होता है، کس طرح وہ لوگوں کو بیداری عطا کرتا ہے، رتھ بان بن کر روح کے ساتھ کیسے ہمیشہ رہتا ہے، جسے بظاہر جان کر تو غم کی شکل والی دنیا سے نجات حاصل کر لے گا، وہ علم کیسا ہے، اس پر ارشاد فرماتے ہیں.
राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्.
خصوصی علم سے مزین یہ علم تمام علوم کا شہنشاہ ہے. علم کے معنی زبان کا علم یا تعلیم نہیں ہے، ودیا ہی کا برہم گتی پردایا سا ودیایا ومکتیے۔ علم اسے کہتے ہیں کہ جسے حاصل ہو، اسے اٹھا کر صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے نجات عطا کر دیں۔ اگر راستے میں شوکتوں، کامیابیوں، خواہ دنیا میں کہیں الجھ گیا تو ثابت ہے کہ جہالت کامیاب ہو گئی، وہ علم نہیں ہے، یہ شہنشاہ علوم راج ودیا ایسا ہے جو یقینی طور پر فائدے مند ہے۔ یہ تمام بسے گئے راز کا شہنشاہ ہے، جہالت اور علم کا پردہ اٹھنے پر جوک کا متحمل ہونے کے بعد ہی اس سے ملن ہوتا ہے۔ یہ انتہائی متبرک، بہترین اور ظاہر ثمرے والا ہے، ادھر کرو ادھر لو، ایسا بظاہر ثمرے والا ہے۔ یہ توہم پرستی یعنی اندھ وشواس نہیں ہے کہ اس جنم میں ریاضت کرو ثمرا کبھی دوسرے جنم میں ملے گا، یہ اعلیٰ دین روح مطلق سے ملحق ہے۔ خصوصی علم کے ساتھ یہ علم کرنے میں سہل اور لافانی ہے۔ باب دو میں جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا تھا کہ ارجن، اس جوگ میں تخم کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس کی تھوڑی بھی ریاضت آواگون کے بہت بڑے خوف سے نجات دلا دیتی ہے۔ چھٹے باب میں ارجن نے سوال کیا تھا کہ بندہ پرور، کمزور کوشش والا ریاضت کش برباد و تباہ تو نہیں ہو جاتا؟ شری کرشن نے بتایا کہ ارجن، پہلے تو عمل کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے بعد اگر تھوڑی سی بھی کامیابی مل گئی تو اس کا کسی پیدائش میں خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی ریاضت کے زیر اثر ہر جن میں وہی کرتا ہے، مختلف پیدائشوں کی ریاضت کے ثمرے میں وہیں پہنچ جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات یعنی روح مطلق ہے۔ اسی کو جوگ کے مالک شری کرشن یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے میں بڑا آسان اور لافانی ہے، لیکن اس کے لیے عقیدت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔
अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि।
आला रियाजत कश अर्जुन, इस दीन में यानी जिसका थोड़ा भी वसीला करने पर खात्मा नहीं होता، عقیدت سے آری انسان یعنی واحد معبود میں من کو مرکوز نہ کرنے والا انسان، مجھ کو حاصل نہ کر یعنی میرے اندر جگہ نہ بنا کر دنیا میں بھٹکتا ہی رہتا ہے، لہذا عقیدت ضروری ہے۔ کیا آپ دنیا سے الگ ہیں؟ اس بارے میں کہتے ہیں،
میا تتمیدم سربم जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः।
मुझ गैर मरई हकीकी शक्ल से ये सारा जहां जलवागर है، यानी मैं जिस हकीकी शक्ल में कायम हूं उसका जलवा सब जगह तारी है، سارے جانداروں کا مقام میرے اندر ہے، لیکن میں ان کے اندر نہیں ہوں کیونکہ میں غیر مرئی حقیقی شکل میں موجود ہوں۔ عظیم انسان جس غیر مرئی شکل میں موجود ہے، وہیں سے یعنی جسم چھوڑ کر اسی غیر مرئی سطح سے ہی بات کرتے ہیں، اسی تسلسل میں آگے کہتے ہیں،
पश्यमे योगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना।
दर हकीकत सारे जानदार भी मेरे अंदर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि मौत उनका खासा है, कुदरत पर मुनहसिर है, लेकिन मेरी कारसाजी की शौकत को देख के जानदारों को जन्म देने वाली और परवरिश करने वाली मेरी रूह जानदारों में मौजूद नहीं है। मैं खुद शनास हूं, लिहाजा मैं उन जानदारों में मौजूद नहीं हूं। यही जोग का असर है। इसको साफ करने के लिए जोग के मालिक श्री कृष्ण नजीर देते हैं।
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय।
जैसे आसमान में ही पैदा होने वाली अजीम हवा आसमान में हमेशा मौजूद है मगर उसे गंदा नहीं कर पाती, ठीक वैसे ही सारे जानदार मुझ में मौजूद हैं, ऐसा समझ। ठीक इसी तरह मैं आसमान की तरह लाताल्लुक हूं, वो मुझे गंदा नहीं कर पाते। सवाल पूरा हुआ। यही जोग का असर है। अब जोगी क्या करता है इस पर फरमाते हैं।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
अर्जुन, कल्प यानी बदलाव के तहलीली दौर में सब मेरी हालत यानी मेरी फितरत को हासिल करते हैं, और बदलाव की इब्तिदा में मैं उनको बार बार विस्तृजामी खास तौर से तकलीफ करता हूं। थे तो वो पहले से लेकिन बदनुमा थे, उन्हीं की तकलीफ करता हूं, सजाता हूं। जो बेहिस हैं उन्हें बेदार करता हूं, बदलाव के लिए तरगीब देता हूं। बदलाव का मतलब है तामीरी इनकलाब। दुनियावी दौलत से बाहर निकलकर जैसे जैसे इंसान रूहानी दौलत में दाखिला पाता है, यहीं से बदलाव यानी कल्प की शुरुआत है। और जब खुदाई एहसास को हासिल कर लेता है वही कल्प बदलाव का खातिमा है। अपना अमल पूरा करके बदलाव भी तहलील हो जाता है। याद इलाही की शुरुआत बदलाव की इब्तिदा है, और याद इलाही की इंतहा जहां मकसद जाहिर हो जाता है कल्प यानी बदलाव का खात्मा है। जब ये खुदाई नूर से मुजयन रूह शक्लों यानी योनियों की वजह से हसद व अदावत वगैरह से नजात पाकर अपनी दायमी हकीकी शक्ल में मुस्तकिल हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी फितरत को हासिल करता है। जो अजीम इंसान कुदरत को खत्म करके हकीकी शक्ल में दाखिला पा गया उसकी कुदरत कैसी? क्या उसमें कुदरत बाकी ही है? नहीं। बाप 3 के 33वें श्लोक में जोग के मालिक श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी जानदार अपनी कुदरत को हासिल करते हैं। जैसा उनके ऊपर कुदरत की सिफात का दबाव है वैसा करते हैं। और बदी ही दीदार के साथ जानकारी रखने वाला आलिम भी अपनी कुदरत के मुताबिक कोशिश करता है। वो पीछे वालों के इफादे के लिए करता है। पूरी तरह बाखबर मुबस्सिर अजीम इंसान की बूदोबाशी उसकी कुदरत है। वो अपनी इसी फितरत के मुताबिक बर्ताव करता है। कल्प यानी बदलाव के खातिमे के वक्त लोग अजीम इंसान की इसी बूदोबाश को हासिल होते हैं। अजीम इंसान के इसी कारनामे पर फिर रोशनी डालते हैं।
प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्।
अपनी खसलत यानी अजीम इंसान की बूदोबाश को मंजूर करके प्रकृते वर्षात, अपनी अपनी खसलत में मौजूद कुदरत सिफात के दबाव में मजबूर हुए इन तमाम जानदारों को मैं बार बार विसृजामी, खास तौर से तखलीक और खास तौर से आरास्ता करता हूं। इन्हें अपने हकीकी शक्ल की जानिब बढ़ने की तरगीब देता हूं। तब तो आप इस अमल की कैद में हैं।
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु।
बाप चार के नवे श्लोक में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बताया था कि अजीम इंसान का तरीके कार मावराई है। बाब नौ के चारवें श्लोक में बताया मैं गैर मरई तौर से करता हूं। यहां भी वही कहते हैं कि धनंजय, जिन आमाल को मैं गैर मरई तरीके से करता हूं उनमें मेरी रगबत नहीं है। गैर जानिबदार की तरह कायम रहने वाले मुझ रूह मुतलक की हकीकी शक्ल को वो आमाल अपने कैद में नहीं रखते, क्योंकि अमल के समरे में जो मकसद हासिल होता है उसमें मैं कायम हूं, लिहाजा उन्हें करने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं। यह तो फितरत के साथ जुड़ी खसलत के कामों का सवाल था। अजीम इंसान की बूदोबाश थी, उनकी तखलीक थी। अब मेरी कारसाजी से जो तखलीक होती है वो क्या है? वो भी एक बदलाव है।
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
अर्जुन, मेरी सदारत में यानी मेरी मौजूदगी में हर जगह जलवागर मेरी कारसाजी से यह कुदरत यानी तीनों सिफात से मुजय्यन कुदरत आठ बुनियादी खसाइल और हसास जी हिस दोनों मुतहर्रिक व साकिन के साथ दुनिया की तख्लीक करते हैं, जो कमतर दर्जे का बदलाव है, और इसी वजह से यह दुनिया आवागोन के चक्कर में घूमती रहती है। दुनिया का यह कमतर कल्प यानी बदलाव, जिसमें वक्त का बदलाव है, मेरी कारसाजी से कुदरत ही करती है। मैं नहीं करता, लेकिन सातवें श्लोक में बयान किया गया कल्प यानी बदलाव इबादत की तहरीक और ताहद तकमील रहनुमाई करने वाला इनकलाब अजीम इंसान खुद करते हैं। एक जगह पर वो खुद कारकुन हैं, जहां वो खास तौर से तखलीक करते हैं। यहां कारकुन कुदरत है जो सिर्फ मेरे इशारे से ये वक्ती तब्दीली करती है, जिसमें अजसाम का बदलाव, वक्त का बदलाव, दौर का बदलाव वगैरह आते हैं। ऐसा जारी व सारी असर होने पर भी कम अक्ल लोग मुझे नहीं जानते, जैसे
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो महेश्वरम।
तमाम जानदारों की अजीम माबूद की शक्ल वाले मेरे आला एहसास को न जानने वाले ला इल्म लोग मुझे इंसानी जिस्म की बुनियाद वाला और कमतर समझते हैं। तमाम जानदारों के दरमियान अरबाब का भी जो अजीम रब है यानी रब्बुल अरबाब है, उस आला एहसास में मैं कायम हूं, लेकिन हूं इंसानी जिस्म वाला। ला इल्म लोग इसे नहीं जानते, वो मुझे इंसान कहकर मुखातिब करते हैं। उनका कसूर भी क्या है? जब वो निगाह डालते हैं तो अजीम इंसान का जिस्म ही तो दिखाई पड़ता है, कैसे वो समझे कि आप अजीम खुदाई एहसास में कायम हैं, वो क्यों नहीं देख पाते। इस पर कहते हैं,
मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता।
वो बेकार की उम्मीद, यानी जो कभी पूरी ना हो ऐसी उम्मीद, बेकार का अमल यानी बंदिश वाला अमल, बेकार का इल्म यानी जो दरअसल जहालत है, विचेतसह खास तौर से बेहिस हुए यानी देवों राक्षसों और शैतानों की तरह फरीफ्ता होने वाली खसलत के मुतहम्मिल होते हैं, यानी दुनियावी खसाइल वाले होते हैं, लिहाजा इंसान समझते हैं। शैतान और देव मन की एक फितरत है, ना कि कोई जात या शक्ल यानी योनि। दुनियावी खसलत वाले मुझे नहीं जान पाते, लेकिन आबिद हजरात मुझे जानते और याद करते हैं।
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
ऐ पार्थ, लेकिन रूहानी खसलत यानी रूहानी दौलत के मुतहम्मिल आबिद हजरात मुझे सारे जानदारों की बुनियादी वजह गैर मरई और लाफानी जानकर पूरे खुलूस के साथ यानी मन के असना में किसी दूसरे को जगह ना देकर सिर्फ मुझ में अकीदत रखकर मुसलसल मेरी याद करते हैं। किस तरह याद करते हैं, इस पर फरमाते हैं,
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
वो लगातार फिक्र के अज्म में अटल रहते हुए मेरी खुसूसियात की फिक्र करते हैं, हुसूल के लिए कोशिश करते हैं और मेरा बार बार आदाब करते हुए हमेशा मुझसे मुजयन होकर लाशरीक अकीदत से मेरी इबादत करते हैं, मुसलसल लगे रहते हैं। कौन सी इबादत करते हैं, कैसा है ये कारनामा? कोई दूसरी इबादत नहीं बल्कि वही यानी यज्ञ, जिसे तफसील के साथ बयान कर आए हैं, उसी परस्तिश को यहां मुख्तसर में जो के मालिक श्री कृष्ण दोबारा बयान कर रहे हैं।
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्।
उनमें से कोई तो मुझ हर जगह जलवागर अजीम उस शान रूह मुतलक की इल्मी यज्ञ के जरिए इबादत करते हैं, यानी अपने नफा व नुकसान और कुव्वत को समझकर इसी मुअय्यना अमल यज्ञ में लगते हैं। कुछ लोग ला शरीक अकीदत से मेरी इबादत करते हैं, मुझे इसी में जम होना है, और दूसरे लोग सब कुछ अलग रखकर मुझे सुपुर्द करके बेगरज खिदमत के ख्याल से मेरी इबादत करते हैं और तमाम तरह से इबादत करते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे दर्जात हैं। यज्ञ की शुरुआत खिदमत से ही होती है, लेकिन उसका आगाज कैसे होता है? जो के मालिक श्री कृष्ण फरमाते हैं, यज्ञ मैं करता हूं, अगर अजीम इंसान रथबान ना हो तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। उन्हीं की निगरानी में रियाजत कश समझ पाता है कि अब वो किस सतह पर है, कहां तक पहुंच सका है, दर हकीकत यज्ञ का कारकुन कौन है, इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण फरमाते हैं।
अहम् क्रतुरहम् यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहम् हुतम्।
कारकुन मैं हूं, दर हकीकत कारकुन के पीछे मुहर्रिक की शक्ल में हमेशा मुंतजिम माबूद ही है। रियाजत कश की कामयाबी मेरी देन है। यज्ञ मैं हूं, यज्ञ इबादत का तरीके कार खास है। तकमिला दौर में यज्ञ जिसकी तकलीफ करता है, उस आबे हयात को नोश फरमाने वाला इंसान अबदी माबूद में दाखिला पा जाता है। आबा व अजदाद को दी जाने वाली खुराक यानी स्वधा समिधा हवन की चीजें मैं हूं, यानी माजी के बेशुमार तासुरात की तहलील करना, उन्हें आसूदगी अता कर देना मेरी नियाज है। दुनियावी आजारों से नजात दिलाने वाली दवा मैं हूं, मुझे हासिल कर लोग इस आजार से छुटकारा पा जाते हैं। दुआ यानी मंत्र मैं हूं, मन को सांस के बीच में रोक लेना मेरी देन है। इस रोक के काम में तेजी लाने वाली चीज घी यानी आज हवन की चीजें भी मैं हूं, मेरे ही नूर में मन के सारे खसाइल तहलील होते हैं। और हवन यानी सुपुर्दगी भी मैं ही हूं। यहां जोग के मालिक श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं, इसका मतलब महज इतना है कि मैं ही मुहर्रिक की शक्ल में रूह से वाबस्ता होकर खड़ा हो जाता हूं और लगातार फैसला देते हुए जोग की रियाजत को पूरा कराता हूं। इसी का नाम खुसूसी इल्म है। काबिले एहतराम महाराज जी कहा करते थे कि जब तक भगवान रतबान होकर तनफ्फुस पर रोकथाम ना करने लगें, तब तक याद इलाही यानी भजन की शुरुआत ही नहीं होती। कोई लाख आंख बंद करे, याद करे, जिस्म को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस रूह मुतलक की हमें चाहत है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर उतरकर रूह से वो बेदार नहीं हो जाता, तब तक सही तादाद में याद की शक्ल समझ में नहीं आती। लिहाजा महाराज जी कहते थे, मेरी शक्ल को पकड़ो, मैं सब कुछ अता करूंगा। श्री कृष्ण फरमाते हैं, सब कुछ मुझसे होता है।
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्सामयजुरेव च।
अर्जुन, मैं ही तमाम दुनिया का धाता यानी संभालने वाला हूं, वालिद यानी परवरिश करने वाला, मादर यानी पैदा करने वाली, पितामह यानी बुनियादी मखरज हूं, जिसमें सभी दाखिला पाते हैं। और काबिले फहम खुद्दूस ओमकार यानी अहम आकार इति ओमकार, वो रूह मुतलक मेरी शक्ल में है। सो अहम तत्वमसी, वो मैं हूं वो तुम हो वगैरह एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। ऐसी जानने के लायक हकीकी शक्ल मैं ही हूं। रुक यानी मुकम्मल इल्तिजा, साम यानी मुसावात दिलाने वाला तरीकेकार, यजुह यानी यज्ञ का खुसूसी तरीका भी मैं ही हूं। जोग के आगाज के मजकूरा तीनों जरूरी हिस्से मुझसे सादिर होते हैं।
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्।
अय अर्जुन, गति यानी काबिले हुसूल आला नजात, भरता यानी परवरिश करने वाला, सबका मालिक, साक्षी यानी नाजिर की शक्ल में मौजूद, सबको जानने वाला, काबिले पनाह, सबका मकाम, बेगरज महबूब दोस्त, तकलीक और खातिमा यानी कयामत, यानी मुबारक ना मुबारक तासुरात की तहलील और लाफानी वजह मैं ही हूं, यानी आखिर में जिनमें दाखिला मिलता है वो सारी शौकतें मैं ही हूं।
तपाम्यहमहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।
मैं सूरज की शक्ल में तपता हूं, बारिश को रागिब करता हूं, मौत से मावरा, लाफानी उनसुर और मौत, हक और बातिल, सब कुछ मैं ही हूं, यानी जो आला नूर अता करता है वो सूरज मैं ही हूं। कभी कभी याद करने वाले मुझे बातिल भी मान बैठते हैं, वो वफात को हासिल करते हैं, इस तरह बयान करते हैं।
त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगा।
इल्म इबादत के तीनों हिस्से ऋग, साम और यजु यानी इल्तिजा, मुसावात का तरीके कार और यज्ञ का बर्ताव करने वाले सोम यानी चांद की कमजोर रोशनी को पाने वाले, गुनाह से आजाद होकर मुकद्दस हुए इंसान, उसी यज्ञ के मुअय्यना अमल यानी तरीके कार के जरिए माबूद की शक्ल में मेरी इबादत कर जन्नत के लिए दुआ करते हैं। यही गैर मुनासिब कही जाने वाली बातिल ख्वाहिश है, इसके बदले उन्हें मौत मिलती है, उनका दोबारा जन्म होता है, जैसा गुज़िश्ता श्लोक में जोग के मालिक ने बताया। वो इबादत मेरी ही करते हैं, उसी मुअय्यना तरीके से इबादत करते हैं, लेकिन बदले में जन्नत की इल्तिजा करते हैं। वो इंसान अपने नेकी के नतीजे में देवताओं के बादशाह इंद्र की सल्तनत यानी इंद्रलोक फिरदौस को हासिल कर जन्नत में देवताओं के बेहतरीन तायुषात का लुत्फ उठाते हैं, यानी ये तायुष भी मैं ही अता करता हूं।
ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते।
वो उस अजीम जन्नत के ऐशो इशरत का लुत्फ उठाकर सवाब के खत्म होने पर आलम नासूत मर्त्य लोक यानी आवागमन को हासिल करते हैं। इस तरह त्रयी धर्मम तीन फराइज इल्तिजा मुसावात और यज्ञ तीनों तरीकों से एक ही यज्ञ का आगाज करने वाले, मेरी पनाह में रहने वाले भी ख्वाहिशमंद इंसान बार बार आवागमन को यानी दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद का खात्मा कभी नहीं होता क्योंकि इस राह में तुख्म की फना नहीं है। लेकिन जो किसी तरह की ख्वाहिश नहीं करते उन्हें क्या हासिल होता है।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
ला शरीक अकीदत से मुझ में मौजूद अकीदतमंद मुझ भगवान की हकीकी शक्ल की मुसलसल फिक्र करते हैं, पर्युपासते जरा भी कोताही ना करते हुए मेरी इबादत करते हैं। उन हमेशा वहदानियत से मुजयन इंसानों की खैरियत का वजन मैं खुद उठाता हूं, यानी उनके जोग की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। इतना होने पर भी लोग दूसरे देवताओं को याद करते हैं।
ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्।
कौन्ते जो अकीदतमंद बंदे दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं वो भी मेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि वहां देवता नाम की कोई चीज तो होती नहीं, लेकिन उनकी वो इबादत गैर मुनासिब तरीके से है। ये मुझे हासिल करने का मुनासिब तरीका नहीं है। यहां जोग के मालिक श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के मौजू को लिया है। सबसे पहले बाब 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा कि अर्जुन, ख्वाहिशात के जरिए जिनके इल्म का इगवा कर लिया गया है, ऐसे कम अक्ल इंसान दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं, और जहां इबादत करते हैं वहां देवता नाम का कोई कादिर इख्तदार तो है ही नहीं, लेकिन पीपल आसेब वगैरह या जहां कहीं भी उनकी अकीदत झुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है, मैं ही हर जगह हूं। उस जगह पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देवता वाली अकीदत को मुस्तकिल करता हूं। मैं ही समरे का तरीका निकालता हूं, समरा देता हूं। समरा यकीनी तौर पर मिलता है, लेकिन उनका समरा फानी है। आज है तो कल लुत्फ उठाने में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि मेरा बंदा खत्म नहीं होता। लिहाजा वो कुंद जहन लोग जिनके इल्म का इगवा हो गया है वही दूसरे देवता की इबादत करते हैं। पेश करदा बाब 9 के 23 से 25वें श्लोक तक जोग के मालिक श्री कृष्ण फिर दोबारा कहते हैं कि अर्जुन, जो अकीदत के साथ दीगर देवताओं की इबादत करते हैं वो मेरी ही अकीदत करते हैं, लेकिन इनकी इबादत का तरीका गैर मुनासिब है। वहां देवता नाम की कोई कादिर चीज नहीं है, उनके हुसूल का तरीका गलत है। अब सवाल उठता है कि जब वो भी बहुत पहले से आपकी इबादत करते हैं और समरा भी मिलता ही है तो बुराई क्या है?
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च वन्ति ते।
तमाम यज्ञों के सारिफ यानी यज्ञ जिसमें तहलील होते हैं, यज्ञ के नतीजे में जो हासिल होता है वो मैं हूं और मालिक भी मैं ही हूं, लेकिन वो मुझे उनसुर से अच्छी तरह नहीं जानते, लिहाजा चवंती गिरते हैं, यानी वो कभी दीगर देवताओं की तरफ रागिब होते हैं और उनसुर से जब तक नहीं जानते तब तक अपनी ख्वाहिशात से भी रागिब रहते हैं। उनका अंजाम क्या है?
यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपिमा।
अर्जुन, देवताओं की इबादत करने वाले देवताओं की निस्बत हासिल करते हैं। देवता हैं तो इख्तदार की बदली हुई शक्ल, वो अपने सालह आमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। आबा व अजदाद की इबादत करने वाले अजदाद को हासिल करते हैं, यानी माजी में उलझे रहते हैं। आसेब की इबादत करने वाले आसेब होते हैं, जिस्म हासिल करते हैं। और मेरा बंदा मुझे हासिल करता है, वो मेरी मुजस्सम हकीकी शक्ल होते हैं, उनका जवाल नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी इबादत का तरीका भी आसान है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः।
बंदगी की शुरुआत यहीं से होती है कि पत्ता, फूल, फल, पानी वगैरह जो कोई मुझे अकीदत के साथ पेश करता है, मन से कोशिश करने वाले उस बंदे का वो सब कुछ मैं खाता हूं, यानी कबूल करता हूं। लिहाजा
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
अर्जुन, तू जो अमल यानी हकीकी अमल करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, सुपुर्दगी करता है, सदका देता है, मन के साथ हवास को जो मेरे मुताबिक तपाता है, वो सब मुझे सुपुर्द कर, यानी मेरे लिए वक्फ होकर ये सब कर। सुपुर्द करने से जोग की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा।
शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि।
इस तरह सारा कुछ वक्फ करके तरके दुनिया के जोग से मुजयन हुआ तो मुबारक ना मुबारक समरा देने वाले आमाल की बंदिश से आजाद होकर मुझे हासिल करेगा। मजकूरा बाला तीनों श्लोकों में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बसिलसिले रियाजत और उसके समरे की अक्कासी की है। पहले पत्ता, फूल, फल, पानी की पूरे खुलूस से सुपुर्दगी, दूसरे खुद सुपुर्दगी के साथ अमल का बर्ताव, और तीसरे पूरी सुपुर्दगी के साथ सब कुछ का ईसार, उनके जरिए अमल की बंदिश से आजाद, यानी खास तौर से आजाद हो जाएगा। आजाद हो जाने से मिलेगा क्या? बताया, मुझे हासिल होगा। यहां नजात और हुसूल एक दूसरे के तकमिला हैं। आपका हुसूल ही नजात है तो उससे फायदा। इस पर फरमाते हैं,
समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्।
मैं सारे जानदारों में मुतदिल हूं। दुनिया में ना कोई मेरा पसंदीदा है और ना नापसंदीदा है, लेकिन जो ला शरीक बंदा है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। यही मेरा वाहिद रिश्ता है, इसमें पूरी तरह तारी हो जाता हूं। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। तब तो बहुत खुशकिस्मत लोग ही याद इलाही में लगते होंगे। याद करने का हक किसे है, इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण फरमाते हैं।
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः।
अगर बेइंतहा बदकार भी लाशरीक अकीदत से यानी मेरे सिवा किसी दूसरी चीज या देवता को ना याद कर सिर्फ मुझे ही मुसलसल याद करता है, वो साधु ही मानने लायक है। अभी वो साधु हुआ नहीं है, लेकिन उसके हो जाने में शुभा भी नहीं, क्योंकि वो हकीकी खुद इरादी के साथ लग गया है। लिहाजा याद आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इंसान हों, क्योंकि इंसान ही हकीकी इरादे वाला है। गीता गुनाहगारों को नजात दिलाती है, और वो राही
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
इस यादे इलाही के जेरे असर वो बदकार भी जल्द ही दीनदार हो जाता है, आला दीन रूह मुतलक से वाबस्ता हो जाता है और हमेशा रहने वाले आला सुकून को हासिल कर लेता है। कौन ते, तो पूरे यकीन के साथ इस सच्चाई को जान कि मेरा बंदा कभी फना नहीं होता। अगर एक जन्म में नजात नहीं मिली तो अगले जन्मों में भी वही रियाजत करके जल्द ही आला सुकून को हासिल कर लेता है। लिहाजा नेक चलन और बदकार सभी को याद करने का हक है। इतना ही नहीं बल्कि
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते पियान्ति पराम गतिम्।
पार्थ औरत वैश्य शूद्र वगैरह और जो कोई गुनाह की शक्ल योनियों वाले भी क्यों ना हो, वो सभी मेरी पनाह में आकर आला नजात को हासिल करते हैं। लिहाजा ये गीता महज इंसान के लिए है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए ये एक तरह भलाई की नसीहत देती है। गीता आलमगीर है। पाप यूनी यानी कसूरवार शक्ल बाब 16 के 7 से 21वें श्लोक में शैतानी खसलत की निशानात के तहत भगवान ने बयान किया कि जो लोग शरीयत के तरीके को तर्क कर महज नाम के यज्ञों के जरिए गुरूर के साथ यज्ञ करते हैं, वो इंसानों में बदकार हैं। यज्ञ है नहीं, लेकिन यज्ञ का नाम दे रखा है और गुरूर से यज्ञ करता है, वो बदखू और बदकार यानी कसूरवार शक्ल है, जो मुझ रूह मुतलक से हसद रखने वाले हैं वही गुनहगार हैं। वैश्य शुद्र राहे माबूद के जीने हैं, औरतों के मुतालिक कभी कदर मंजिलत कभी हकारत का ख्याल मौशरे में हमेशा रहा है, लिहाजा श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। लेकिन जोग के तरीकेकार में औरत और मर्द दोनों का बराबर का ही दखल है।
किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा।
फिर तो ब्राह्मण और शाही आरिफ क्षत्रिय दर्जा हासिल करने वाले अकीदतमंदों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक खुसूसी हालत है जिसमें माबूद से निस्बत दिला देने वाली सारी सलाहियतें मौजूद हैं। सुकून, खाकसारी, तजिर्बाती, हुसूल याबी, तसव्वुर और माबूद की रहनुमाई में जिसमें आगे बढ़ने की सलाहियत है, यही ब्राह्मण की हालत है। शाही आरिफ क्षत्रिय में माल और जर वो कामयाबियों का फैलाव, बहादुरी, हुक्मरानी की खसलत, पीछे कदम ना हटाने की फितरत रहती है। इस जोग की सतह पर पहुंचे हुए जोगी तो नजात पाते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। लिहाजा अर्जुन, तू आराम से आरी वक्ती तौर से इस इंसानी जिस्म को पाकर मेरी ही याद कर, इस फानी जिस्म की शफकत वो परवरिश में वक्त जाय ना कर। जोग के मालिक श्री कृष्ण ने यहां चौथी बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जिक्र किया। बाब दो में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए जंग से बढ़कर भलाई का कोई रास्ता नहीं है। बाब तीन में उन्होंने कहा कि अपने फर्ज मनसबी में मौत भी बेहतर है। बाब चार में उन्होंने मुख्तसर में बताया कि चार नस्लों की तखलीक मैंने की तो क्या इंसान को चार जातों में बांटा। बोले नहीं, गुण कर्म विभागशः सिफात के पैमाने से अमल को चार दर्जात में रखा। श्री कृष्ण के मुताबिक अमल वाहिद यज्ञ का तरीकेकार है, लिहाजा इस यज्ञ को करने वाले चार तरह के हैं। इब्तदाई दौर में यह यज्ञ का कारकुन शुद्र है, कम इल्म है, कुछ करने की सलाहियत बड़ी, रूहानी दौलत का इजाफा हुआ तो वही यज्ञ का कारकुन वैश्य बन गया। इससे आगे बढ़ने पर, कुदरत की तीनों सिफात को काटने की सलाहियत आ जाने पर वही रियाजतकश क्षत्रिय दर्जे का है। और जब इसी रियाजतकश की खसरत में माबूद से निस्बत दिलाने वाली सलाहियतें ढल जाती हैं तो वही ब्राह्मण है। वैश्य और शूद्र के बनिस्बत क्षत्रिय और ब्राह्मण दर्जे का रियाजतकश हुसूल के ज्यादा करीब है। शूद्र और वैश्य भी उसी माबूद से निस्बत पाकर पुरसुकून होंगे। फिर उसके आगे के मर्तबे वालों के लिए तो कहना ही क्या है, उनके लिए तो तय ही है। गीता जिन उपनिषदों यानी शरीयतों का मगज सुखन है, उनमें रबूबी आलिमा खवातीन के वाकयात भरे पड़े हैं। गैर मुस्तनद मजहब से डरने वाले कदामत परस्त वेद को पढ़ने ना पढ़ने के हक का इंतजाम देने में सर खपाते रहे। जोग के मालिक श्री कृष्ण का साफ ऐलान है कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले मुअय्यना अमल में औरत मर्द सभी को बराबर हक है, लिहाजा वो याद के अकीदे पर हिम्मत अफजाई करते हैं।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि उक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः।
अर्जुन, मुझ में ही मन लगाने वाला बन, सिवा मेरे दूसरे ख्यालात मन में ना आने पाए, मेरा लाशरीक बंदा बन, मुसलसल गौर फिक्र में लग, अकीदत के साथ मेरी ही मुसलसल इबादत कर और मेरा ही आदाब बजा। इस तरह मेरी पनाह में होकर रूह को मुझ में यकताई के ख्याल से कायम करके मुझे ही हासिल करेगा, यानी मेरे साथ यकताई हासिल करेगा। मगज़े सुखन निष्कर्ष। इस बाब के शुरू में श्री कृष्ण ने इरशाद फरमाया, अर्जुन, तेरे जैसे बेऐब बंदे के लिए میں اس علم کو خصوصی علم کے ساتھ بیان کروں گا، جس کو جاننے کے بعد کچھ بھی جاننا باقی نہیں رہے گا، اسے جان کر تو دنیا کی بندش سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ علم سارے علوم کا شہنشاہ ہے۔ علم وہ ہے جو اعلی معبود سے نسبت دلائے، یہ علم اس کا بھی شہنشاہ ہے، یعنی یقینی طور پر بھلائی کرنے والا ہے۔ یہ تمام بصیغہ راز کا بھی شہنشاہ ہے، پوشیدہ چیز کو بھی آشکارا کرنے والا ہے۔ یہ ظاہری ثمرے والا ریاضت کرنے میں سہل اور لافانی ہے۔ تھوڑا بھی اس کا وسیلہ آپ سے کامیاب ہو جائے تو اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زیر اثر وہ اعلی شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، عقیدت سے آری انسان اعلی نجات کو نہ حاصل کر دنیاوی بھول بھلیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ جوگ کے مالک شری کرشن نے جوگ کی شوکت پر بھی روشنی ڈالی، غموں کے وصل کا فراق ہی جوگ ہے، یعنی جو دنیا کے وصل و فراق سے ہر طرح مبرہ ہے، اس کا نام ہے جوگ۔ عنصر اعلی روح مطلق کے ملن کا نام جوگ ہے، روح مطلق کا حصول ہی جوگ کی انتہا ہے۔ جو اس سے نسبت پا گیا، اس جوگی کے اثر کو دیکھ کر تمام دنیا کا مالک اور جانداروں کا رزاق ہونے پر بھی میری روح ان جانداروں سے لا تعلق ہے، میں خود کفیل ہوں، وہی ہوں جیسے آسمان میں پیدا سب جگہ چکر لگانے والی ہوا آسمان میں ہی موجود ہے لیکن اسے گندا نہیں کر پاتی، اسی طرح تمام جاندار مجھ میں موجود ہیں، تحلیل ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے ملوث نہیں ہوں۔ ارجن، کلپ یعنی بدلاؤ کی ابتدا میں میں جانداروں کو خاص طریقے سے تخلیق کرتا ہوں، سجاتا ہوں، اور کلپ کے یعنی بدلاؤ کے اتمامی دور میں تمام جاندار میری فطرت کو یعنی جوگ کے حامل عظیم انسان کی بود و باش کو، ان کے غیر مرئی خیال کو حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ عظیم انسان دنیا سے ماورا ہے، لیکن حصول کے بعد خود خیالی یعنی خود میں مستقل رہتے ہوئے عوامی فراہم کے لیے جو کام کرتا ہے، وہ اس کی ایک بود و باش ہے۔ اس بود و باش کے کاروبار کو اس عظیم انسان کی فطرت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک خالق یعنی برہما تو میں ہوں، جو جانداروں کو کلپ یعنی بدلاؤ کے لیے ترغیب دیتا ہوں، اور دوسری تخلیق کرنے والی تینوں صفات والی قدرت ہے، جو میری فطرت سے متحرک وہ ساکن کے ساتھ سارے جانداروں کو تخلیق کرتی ہے۔ یہ بھی ایک کلپ یعنی بدلاؤ ہے، جس میں جسمانی بدلاؤ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضمر ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں، ایک دشٹ اتیشے دکھ روپا جا بس جیو پرا بھو کوپا۔ قدرت کی دو قسمیں علم اور جہالت ہیں، ان میں جہالت بد ہے، تکلیف دہ ہے، جس سے لاچار جاندار دنیاوی کنویں میں پڑا ہے، جس سے ترغیب پا کر جاندار وقت، عمل، فطرت اور صفات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ دوسری ہے علمی فطرت یعنی ودیا مایا، جسے شری کرشن کہتے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں۔ گوسوامی تلسی داس جی کے مطابق معبود تخلیق کرتے ہیں، ایک رچئی جگ گن بس جا کے، پربھو پریرت نہیں نجبل تا کے۔ یہ یعنی فطرت دنیا کی تخلیق کرتی ہے، جس کے زیر اثر صفات ہیں، افادی صفات واحد معبود میں ہے۔ دنیا میں صفات ہیں ہی نہیں، وہ تو فانی ہے، لیکن علم میں معبود ہی محرک بن کر کرتے ہیں۔ اس طرح بدلاؤ دو طرح کے ہیں، ایک تو چیزوں کا जिस्म और दौर का बदलाव यानी कल्प है, लेकिन ये बदलाव कुदरत ही मेरे तवस्सुत से करती है। लेकिन इससे अजीम कल्प जो रूह को लतीफ शक्ल अता करता है, उसकी आराइश अजीम इंसान करते हैं। वो बेहिस जानदारों को हसास बनाते हैं। याद इलाही की इब्तिदा ही इस कल्प यानी बदलाव की शुरुआत है, और याद इलाही की इंतहा कल्प का खात्मा है। जब ये बदलाव दुनियावी आजार से पूरी तरह सेहतमंद बनाकर दाइमी माबूद में निस्बत दिला देता है, उस इब्तदाई दौर में जोगी मेरी बूदोबाश और मेरी हकीकी शक्ल को हासिल कर लेता है। हुसूल के बाद अजीम इंसान की बूदोबाश ही उसकी फितरत है। दीनी किताबों में वाकयात मिलते हैं कि चारों जमानों के गुजर जाने पर ही कल्प यानी बदलाव पूरा होता है, कयामत होती है। आम तौर से लोग इसे हकीकी नहीं समझते। युग दौर का मतलब है दो, आप अलग हैं, माबूद अलग है। तब तक दौर के फराइज रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका जिक्र किया है। जब मलकाते मजमूम मुतहरिक होते हैं, मलकाते रद्दिया मामूली तादाद में हैं, चारों तरफ दुश्मनी और मुखालिफत है, ऐसा इंसान कल झुक का है। वो याद इलाही में नहीं लग पाता, लेकिन रियाजत शुरू होने पर दौर बदल जाता है। मलकाते रद्दिया में इजाफा होने लगता है, मलकाते मजमूम घटने लगता है, थोड़ा बहुत मलकाते फाजिला ही खसलत में आ जाते हैं। खुशी और खौफ की कश्मकश बनी रहती है, तो वही रियाजती द्वापर यानी कलयुग के पहले वाला दौर की हालत में आ जाता है। बतदरीज मलकाते फाजिला का इजाफा होने पर मलकाते रद्दिया बहुत कम रह जाता है, इबादत के अमल में उनसियत पैदा हो जाती है। ऐसे त्रेता युग द्वापर के पहले वाला दौर में ईसार की हालत वाला रियाजत कश मुख्तलिफ यज्ञ करता है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ के दर्जे वाला विर्द जिसका उतार चढ़ाव तनफ्फुस पर है, उसे करने की सलाहियत रहती है। जब महज मलकाते फाजिला बाकी रहा, गैर मुसावात यानी गैर बराबरी खत्म हो गई, मुसावात आ गई, ये इल्म का दौर यानी कामयाबी का दौर क्वाह सतजुग यानी दौर हक का असर है। उस वक्त जोगी हजरात खुसूसी इल्म वाले होते हैं, माबूद से निस्बत बनाने वाले होते हैं, कुदरती तौर से कुव्वत तसव्वुर की उनमें सलाहियत रहती है। होशमंद लोग दौरे फराइज के उतार चढ़ाव को मन की गहराई के साथ समझते हैं। मन पर काबू पाने के लिए बेदीनी को तर्क करके दीन की तरफ मुखातिब होते हैं। पाबंद मन की भी तहलील हो जाने पर दौरों के साथ कल्प का भी खात्मा हो जाता है, तकमील में दखल दिलाकर कल्प भी साकिन हो जाता है। यही कयामत है, जब यह कुदरत उस आला इंसान में तहलील हो जाती है। उसके बाद अजीम इंसान की जो बूदोबाश है, वही उसकी फितरत है, वही उसका मिजाज है। जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जाहिल लोग मुझे नहीं जानते, मुझ रब्बुल अरबाब को भी नाचीज समझते हैं, आम आदमी मानते हैं। हर एक अजीम इंसान के साथ यही परेशानी रही है कि उस दौर के समाज ने उनकी अनदेखी की, उनकी डटकर मुखालिफत हुई। श्री कृष्ण भी उससे मावरा नहीं थे। वो कहते हैं कि मेरा मकाम आला एहसास में है, लेकिन जिस्म मेरा भी इंसान का ही है, लिहाजा कम अक्ल वाले इंसान मुझे कमतर कहकर इंसान बताकर मुखातिब करते हैं। ऐसे लोग बेकार की उम्मीद वाले हैं, बेसूद अमल वाले हैं, ला हासिल इल्म वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो ख्वाहिश नहीं करते, हो गए बेगरस अमली जोगी। वो दुनियावी खसलत वाले मुझे नहीं पहचान पाते, लेकिन रूहानी दौलत को हासिल करने वाले लोग पूरे खुलूस से मेरी याद करते हैं, मेरी खूबियों की मुसलसल फिक्र करते हैं। ला शरीक इबादत यानी यज्ञ के लिए अमल के दो ही रास्ते हैं। पहला है इल्म का यज्ञ, यानी अपने भरोसे अपनी कुव्वत को समझकर उसी मुअय्यना अमल में लग जाना, और दूसरा तरीका मालिक और खादिम का तसव्वुर है, जिसमें फनाफिल शेख होकर वही अमल किया जाता है। इन्हीं दो नजरियात से लोग मेरी इबादत करते हैं, लेकिन इनके जरिए जो हासिल होता है वो यज्ञ, वो हवन, वो कारकुन, अकीदत और दवा जिससे दुनियावी आजार का इलाज होता है, मैं ही हूं। आखिर में जो नतीजा हासिल होता है वो नतीजा भी मैं ही हूं। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, तीन उलूम, दुआ, यज्ञ और मुसावात दिलाने वाले तरीकों से मुरतब करते हैं, लेकिन उसके एवज में जन्नत के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो मैं जन्नत भी अता करता हूं, उसके जेरे असर वो इंद्र का मकाम हासिल कर लेते हैं, एक लंबे अरसे तक उसका लुत्फ भी उठाते हैं, लेकिन सवाब की कमी होने पर वो दोबारा जन्म लेते हैं। उनका तरीका सही था, लेकिन तयुशात की ख्वाहिश रहने पर दोबारा जन्म पाते हैं, लिहाजा आयशो इशरत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। जो लाशरीक अकीदत के साथ यानी मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं ऐसे ख्याल से मुसलसल मुझसे लौ लगाते हैं, जरा भी कमी ना रह जाए इस तरह जो याद करते हैं, उनके जोग की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। इतना सब कुछ होने पर भी कुछ लोग दूसरे देवताओं की इबादत करते हैं, वो भी मेरी इबादत करते हैं, लेकिन वो मुझे हासिल करने का सही तरीका नहीं है। वो तमाम यज्ञों की सारिफ शक्ल में मुझे नहीं जानते, यानी उनकी इबादत के समरे में मैं नहीं मिलता, लिहाजा उनका तनज्जुल हो जाता है। वो देवता आसेब आबा व अजदाद के ख्यालाती शक्ल में दुनिया में कायम रहते हैं, जबकि मेरा बंदे मुजस्सम मुझमें मकाम करता है, मेरी ही हकीकी शक्ल हो जाता है। जो कि मालिक श्री कृष्ण ने इस यज्ञ के लिए अमल को बे इंतहा सहल बताया कि कोई फल या जो कुछ भी अकीदत से देता है उसे मैं कबूल करता हूं। लिहाजा अर्जुन, तू जो कुछ भी इबादत की शक्ल में करता है मुझे सुपुर्द कर, जब सब कुछ का वक्त हो जाएगा तब जोग का हामिल बनकर तू आमाल की बंदिश से आजाद हो जाएगा, और ये नजात मेरी ही हकीकी शक्ल है। दुनिया में रहने वाले सारे जानदार मेरे ही हैं, किसी भी जानदार से ना मुझे मोहब्बत है ना नफरत, मैं गैर जानिबदार हूं, लेकिन जो मेरा लाशरीक बंदा है मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। बे इंतहा बदकार, सबसे बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो, फिर भी लाशरीक अकीदत और बंदगी से मुझे याद करता है तो वो नेक यानी साधु माने जाने के लायक है। उसका इरादा अटल है तो वो जल्द ही माबूद से मुनासिबत पा लेता है और दायमी आला सुकून को हासिल कर लेता है। यहां श्री कृष्ण ने साफ किया कि दीनदार कौन है। दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी जानदार अगर पूरे खुलूस के साथ वाहिद रूह मुतलक को याद करता है, उसकी फिक्र करता है, तो वो जल्द ही दीनदार हो जाता है। लिहाजा दीनदार वो है जो एक माबूद की याद करता है। आखिर में यकीन दहानी कराते हैं कि अर्जुन, मेरा बंदा कभी खत्म नहीं होता, कोई शूद्र हो, नीच हो, खानदानी हो, गैर खानदानी हो, या उसका कुछ भी नाम हो, मर्द या औरत हो, कसूरवारी शक्ल यानी पाप योनि वाला या कीड़े मकोड़े जानवर वगैरह की योनि वाला जो भी हो मेरी पनाह में आकर आला शरफ को हासिल करता है। लिहाजा अर्जुन सुख से आरी वक्ती लेकिन कमयाब इंसानी जिस्म को हासिल कर मेरी याद कर, फिर तू जो माबूद से मुनासिबत दिलाने वाली सलाहियतों से मुजयन है उस ब्राह्मण और जो शाही खानदान में पैदा हुए आरिफ की सतह से याद करने वाला है, ऐसे जोगी के लिए कहना ही क्या है, वो तो नजात पा ही गया है। लिहाजा अर्जुन मुसलसल तौर से मुझ में मन लगाने वाला बन, मुसलसल आदाब बजा, इस तरह मेरी पनाह में आकर तू मुझे ही हासिल करेगा जहां से पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता। पेश करदा बाब में उस इल्म पर रोशनी डाली गई है जिसे श्री कृष्ण खुद बेदार करते हैं। ये शहंशाह उलूम है जो एक बार बेदार होने के बाद यकीनी तौर पर फलाह का बाइस बनाता है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या जागृति नाम नवमोध्याय। इस तरह श्रीमद भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में बेदारी शहंशाह उलूम नाम का नवा बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये राज विद्या जागृति नाम नवमोध्याय। इस तरह काबिल एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में बेदारी शहंशाह उलूम राज विद्या जागृति नाम का नवा बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत्।